ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ दिल्ली वासियों के लिए बनाई जाने वाली ग्रीष्मकालीन योजना पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हज यात्रियों के लिए आयोजित फिटनेस जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अलका सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज रामलीला मैदान का दौरा किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, श्री सचदेवा और श्री चुग ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जानकारी दी। भाजपा ने कल विधायक दल की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधायक दल की बैठक पंडित पंत मार्ग स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में होगी।
मीडिया के साथ बातचीत में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में आगामी बृहस्पतिवार को होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है।
रामलीला मैदान में तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली के लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री जी स्वयं रहने वाले हैं, पूरी कैबिनेट रहने वाली है, राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर रहेंगे और दिल्ली के 70 विधायक भी वहां पर रहेंगे, तो 20 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री तय हो जाएगा।
दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 30,000 व्यक्तियों की क्षमता वाले रामलीला मैदान को सजाया जा रहा है। इसकी चार दीवारी पर नए रंग रोगन का काम चल रहा है। 8 फरवरी को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा ने 70 सदस्यीय विधानसभा में 48 सीटें हासिल की और 27 साल बाद राजधानी में सत्ता में वापसी की। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक हरित पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य शहरी परिवेश में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना है। गैर सरकारी संगठन ग्रीन यात्रा के साथ मिलकर विश्वविद्यालय ने शहरी सघन वृक्षारोपण की परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के अंतर्गत डीयू आर्ट्स फैकल्टी के पास 300 वर्ग मीटर के एक छोटे से भूखंड पर 41 प्रजातियों के लगभग 750 पौधे लगाए गए हैं। ये परियोजना जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मायावाकी द्वारा विकसित मायावाकी तकनीक पर आधारित है, जो घने समूहों में देशी पेड़ों और झाड़ियों के रोपण पर बल देती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह परियोजना न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के लिए विश्वविद्यालय के प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि अन्य शैक्षणिक संगठनों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटना और शहरों में पारिस्थितिकी संतुलन बहाल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में मेट्रो यार्ड पर देश के पहले ऊर्ध्वाधर बायोफिशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मनोहर लाल ने ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर भी जोर दिया। उन्होंने एयर कंडीशनर के तापमान को नियंत्रित करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए क्लैप आधारित प्रणाली के उपयोग का सुझाव दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 1 मेगावाट की छत सौर संयंत्र भी शुरू किया। उन्होंने एक स्थायी शहरी परिवहन का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की सराहना की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। उपराज्यपाल सचिवालय में आयोजित बैठक में दिल्ली वासियों के लिए बनाई जाने वाली ग्रीष्मकालीन कार्य योजना पर चर्चा की गई, ताकि बढ़ती गर्मी के साथ लोगों को पानी की कोई समस्या न हो। उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा वक्तव्य में कहा गया कि मई से जून के महीनों में पानी की कमी न हो, इसके लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ बातचीत करने की योजना पर चर्चा की गई है। वक्तव्य में कहा गया है कि यमुना में प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए 4 आयामी रणनीति बनाई गई है। उपराज्यपाल ने यमुना की सफाई के लिए 3 साल की समय सीमा निर्धारित की है, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की साफ सफाई के वार्षिक कार्यक्रम के कारण इस महीने की 21 और 22 तारीख को राजधानी के कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि हेमकुंड कॉलोनी, K40 सीआर पार्क, बसंत लोक क्षेत्र, एफ ब्लॉक, LIG, DDA फ्लैट्स, कालकाजी, जंगपुरा और लाजपत नगर जैसे कई क्षेत्रों में 21 तारीख को जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हज यात्रियों के लिए आयोजित फिटनेस जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने हज यात्रियों के साथ पैदल चलकर उन्हें मक्का और मदीना की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार हज यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। श्री रिजिजू ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हज यात्रियों को फिट रखना है।
जो भी हज के लिए सिलेक्शन हुए हैं, सबका फिजिकली, मेंटली हर चीज से फिट रहे ताकि अपना हज यात्रा पूरा करके आ सके, इसके लिए दिल्ली हज कमेटी और उनके चेयरपर्सन कौसर जहां जी और पूरे टीम ने बहुत अच्छा से ये अरेंजमेंट किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जम्मू कश्मीर में पुलिस, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के क्रियान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। सरकार ने सरकारी वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकरूपता लाने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली जारी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने नई दिल्ली में ये नियमावली लॉन्च की। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक आईटी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महत्वाकांक्षी पहल देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करेगी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी। डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामंजस्यपूर्ण दृश्य पहचान स्थापित करने में सरकार की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें एपिसोड में आज संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त पात्रता परीक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा के मेधावी छात्रों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों ने कहा कि विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में सभी प्रकार की जानकारियों को नहीं संग्रहित कर सकते, ऐसे में उन्हें ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल करने का भी सुझाव दिया। श्री ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे राजीव कुमार का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो गया। केरल कैडर के 1988 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी श्री ज्ञानेश कुमार संसदीय कार्य मंत्रालय सचिव भी रह चुके हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा 1989 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ज्ञानेश कुमार को नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है जो आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सशक्त बनाएगी। श्री सचदेवा ने कहा कि श्री कुमार के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न होती रहेगी तथा लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया। मौसम भवन की चार दीवारी पर बनी कलाकृतियां भारत में मौसम विज्ञान के इतिहास को खूबसूरती से प्रदर्शित करती हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री सिंह ने कहा कि ये ओपन आर्ट म्यूजियम मौसम विज्ञान विभाग के पिछले 150 वर्षों के विकास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि और नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस योजना ने नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बजट के साथ वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्पादों के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 पर 18वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने 2047 तक विकसित देश बनने के लिए संसाधनों की बर्बादी कम करने और संसाधन दक्षता को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया।
श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की पुनः उपयोग की अर्थव्यवस्था का बाजार वर्ष 2050 तक लगभग 2,00,000 करोड़ डॉलर का होगा और इससे 1 करोड़ रोजगार सृजित होंगे। पुनः उपयोग की अर्थव्यवस्था एक आर्थिक मॉडल है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट को नष्ट करना और पुनः उपयोग तथा संसाधन दक्षता के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं मुकेश कुमार।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में आशाएं एक उम्मीद नामक एनजीओ के सहयोग से पुलिस थाना सोनिया विहार में मादक पदार्थ रोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ड्रग्स एंड ऑल ड्रीम्स विषय पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को प्रभावित किया। कार्यक्रम में लगभग 150 से 200 लोगों ने भाग लिया, जो अवैध मादक पदार्थ के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समुदाय के उत्साह को दर्शाता है। नुक्कड़ नाटक में प्रतिभागियों ने सभी प्रकार के मादक पदार्थ से दूर रहने और समाज के अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। जागरूकता कार्यक्रम नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करती है। भारत और कतर ने आज नई दिल्ली में 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते ज्ञापन 2 देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और दोहरे करों से बचने और आयकरों से संबंधित है। इस वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी की उपस्थिति में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मंत्रियों और कतर के वरिष्ठ अधिकारी सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित था। अमेरिका आज सुबह राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में एक औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और कई केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 2021 से जर्मन नागरिकों को निशाना बना रहे साइबर अपराध नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की। इस संबंध में ब्यूरो ने 14 से 17 फरवरी तक दिल्ली, कोलकाता, सिलीगुड़ी में 6 स्थानों पर छापेमारी की। दिल्ली में आज दोपहर के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ दिल्ली वासियों के लिए बनाई जाने वाली ग्रीष्मकालीन योजना पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हज यात्रियों के लिए आयोजित फिटनेस जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।